प्रिय श्रोताओं नमस्कार, सत्यवचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमें विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हैं और आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको फिर से बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरा तिमोथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पौलुस तिमोथियुस को कहता है और हम सब विश्वासियों को भी, और वह हमें बताता है कि एक विश्वासी एक धावक है और एक विश्वासी एक पात्र है, और इतना ही नहीं, हम प्रत्येक विश्वासी को इस संसार में रह करके सेवक के रूप में प्रभु के वचन को पहुंचाना है। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके सच्चे और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो प्रत्येक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। हम विनती करते हैं कि आप उनके हर एक पापों को क्षमा कीजिए, उन्हें बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, बुरे दोस्तों से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा कीजिए। हमारी प्रार्थना उन श्रोता भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति और छुटकारा प्रदान कीजिए। आज के अध्ययन के द्वारा हम सबको आशीषित कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दूसरा तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इस अध्याय का विषय है भावी विश्वास त्याग और धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता। पौलुस अंतिम दिनों में विश्वास त्याग की चेतावनी देता है। वह विश्वास त्याग की विषहर औषधि भी हमें देता है जो परमेश्वर का वचन है। इस कारण आज यह अध्याय ऐसा महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। तो मित्रों, इस अध्ययन पर आप ध्यान दें। आइए देखें अंतिम दिनों में विश्वास त्याग। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लिखा है यह स्मरण रख। पौलुस तिमोथियुस को एक अति महत्वपूर्ण बात बता रहा है और उसे स्मरण रखने के लिए भी कहता है, भविष्य में क्या होगा और कलीसिया का भविष्य क्या होगा। व्यवस्थित कलीसिया के लिए भविष्य ज्योतिर्मय नहीं है। लिखा है अंतिम दिनों में, यह नए नियम में अनेक स्थानों में काम में ली गई है, तकनीकी शब्दावली है। यह कलीसिया के उठाए जाने के तुरंत बाद का समय है। मेरे मित्रों, कलीसिया के अंतिम दिन इसराइल जाति के अंतिम दिन नहीं है। पुराने नियम में इसराइल के अंतिम दिनों का उल्लेख बार बार किया गया है। लिखा है युग के अंत में या अंत समय में, जो महाक्लेश का समय है। यह समय कलीसिया के अंतिम दिनों से सर्वथा भिन्न है, जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद का निकट समय है। मेरे मित्रों, पौलुस के समय का विश्वास त्याग उस समय भी होगा। इफिसियस की कलीसिया को तो पौलुस ने चेतावनी ही दे दी थी कि उसके मरणोपरांत झूठे शिक्षक कलीसिया में घुसपैठ करेंगे। इसे हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 29 और 30 पद में पढ़ते हैं। उसने कहा था, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िये तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। वे परमेश्वर का वचन सुनाने की अपेक्षा कलीसिया को नोचेंगे। मेरा विश्वास करें कि झूठे शिक्षक भेड़ों का ऊन नोचते हैं, और आज हमारे कलीसियाओं में हम इस चीज को देख सकते हैं। कई ऐसे लोग बाहर से आते हैं जो झूठे शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। पौलुस कहता है, कठिन समय अर्थात दुखदायी और घोर निराशा का समय। मेरे प्रियो, यह संसार के कथनानुसार नहीं लगता है। कलीसिया प्रभु राज ले आएगी या संसार को बदल देगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। बाइबल की शिक्षा के अनुसार तो ऐसा नहीं होगा। यह तो उनकी बातें हैं जो भावात्मवादी हैं और शुतुरमुर्ग के समान रेत में मुंह छिपाकर सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते हैं। अंतिम समय में होने वाली 19 अलग अलग घटनाएं यहां पर दी गई हैं। यह मन भावन नहीं है, परंतु हमें देखना ही होगा, क्योंकि यह संसार का वर्तमान चित्रण है। मेरे विचार में हम कलीसिया के अंतिम दिनों में पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि इन पदों में व्यक्त परिदृश्य आज प्रकट है। कलीसिया के इतिहास में आप इन बातों में से कुछ को स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, परंतु आज के समान किसी युग में ये सब बातें प्रकट नहीं हुई हैं। मेरे विचार में आज हम उन कठिन दिनों में हैं जिनका वर्णन इन पदों में किया गया है। मैं यह तो नहीं जानता कि यह सब कब तक चलता रहेगा, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि स्थिति अधिक खराब होगी। दूसरा तीमुथियुस के पत्र 3 अध्याय उसके 2-4 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले लोग होंगे। मेरे मित्रों, यहां अंतिम दिनों को प्रकट करने के लिए 19 शब्द एवं शब्दावलियां दी गई हैं। लिखा है स्वार्थी। आज यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे देश के नेतागण चाहते हैं, वरन बल देते हैं कि समाचार माध्यम उनकी प्रशंसा करे। सब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं स्वार्थ के कारण। विद्यालय और विश्वविद्यालय में भी स्वार्थ दिखाई देता है, कलीसियाओं में भी स्वार्थ का बोलबाला है। अध्याय 4:3 में पौलुस कहता है, लोग कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। वे अपनी प्रशंसा सुनना चाहेंगे, वे अपनी कलीसियाओं और समितियों की प्रशंसा करेंगे। वे उनसे यह नहीं कहेंगे कि वे पापी हैं और उन्हें एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज के समाज में स्वार्थ सर्वोपरि है। ऐसा पूर्व काल में नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, लोभी अर्थात पैसों का लालची स्वार्थी मनुष्य, पैसों का लोभी अपने आप बन जाता है। पुराना स्वभाव अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करना चाहता है। आपको स्मरण होगा कि पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस पैसों के प्रेम को सब बुराइयों की जड़ कहता है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, परंतु पैसों के प्रति हमारा लोभ समस्या उत्पन्न करता है। लोभ धन संग्रह में ही नहीं, उसके उपयोग में भी प्रकट होता है। आज कितने लोग हैं जो पैसों के लोभी हो गए हैं, जिसके कारण से वे समस्याओं में पड़े हुए हैं। कई लोग जेल में हैं, और इसीलिए पौलुस कहता है कि पैसा का लोभी स्वयं अपने आप बन जाता है। तीसरी बात देखते हैं, डींग मार। आप घमंडी को चाल से पहचान सकते हैं, वह भोर के समान चलता है। वह ढोंगी है, ऊपर से कुछ और बाहर से कुछ उसका स्वभाव होता है। चौथी बात, अभिमानी अर्थात बड़प्पन दिखाने वाला। कुछ लोग हैं जो अपने छोटे से पद को भी बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, अभिमान करते हैं। और पांचवी बात हम देखते हैं, निंदक। यहां निंदक से अर्थ है वे जो दूसरों के काम में या घटनाओं में अपनी टांग अड़ाते हैं। मुझे एक कहानी स्मरण आती है। पत्नी ने पति से कहा, शहर में राजू और उसकी पत्नी के झगड़े की बहुत चर्चा है। कुछ लोग पत्नी के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग पति के पक्ष में। पति ने कहा, मेरे विचार में कुछ सनकी लोग अपने काम से मतलब रखे हुए हैं, अतः निंदक वे हुए जो दूसरों की ठठोली करते हैं। यहां पर बात यह है कि पति पत्नी बीच में हैं, तो लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग टांग अड़ाते हैं, रुकावट डालते हैं। छठवीं बात हम देखते हैं, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। यह तो प्रकट ही है, आज हजारों बच्चे अपने माता पिता से पूर्ण विद्रोही की दशा में हैं। मैं कई परिवार को जानता हूं जिसमें माता पिता से बच्चे बात नहीं करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, परंतु अपने जिद के द्वारा अपने चीजों को मनवाना चाहते हैं। सातवीं बात, कृतज्ञ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेवा तो ले लेते हैं, परंतु धन्यवाद भी नहीं कहते हैं। परमेश्वर से भी सब कुछ प्राप्त करके कभी धन्यवाद नहीं कहते। लोग ये सोचते हैं कि ये मेरे मेहनत का है, परंतु वे इस बात को भूल जाते हैं कि यह सब कुछ परमेश्वर का है, उसने उन्हें दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना अवश्य है। आठवीं बात है, अपवित्र। शब्दों से और जीवन से परमेश्वर के विरुद्ध होना। और नवी बात है, दया रहित अर्थात अप्राकृतिक संबंध रखना, जैसे समलैंगिक संबंध। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 24 पद में पौलुस स्पष्ट कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। समलैंगिक संबंधों को स्वीकार करके मनुष्य पतन की अतः गहराई में गिर जाता है। आज संसार में कई स्थानों पर इसे मान्यता दे दिया गया है, परंतु परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। प्रभु नहीं चाहता कि लोग ऐसा करें। दसवीं बात है, क्षमा रहित। ये वे लोग हैं जिनके साथ निर्वाह करना असंभव है, उनसे मेल नहीं किया जा सकता है। मैंने एक होटल में लिखा हुआ देखा, हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को प्रसन्न करना असंभव है। ग्यारहवीं बात है, दोष लगाने वाले। आज असंख्य हैं जो हमेशा एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देखते, परंतु दोष लगाते रहते हैं। और बारहवीं बात है, असंयमी। जिनमें स्वयं पर अंकुश लगाने की क्षमता नहीं है। और 13वीं बात कठोर अर्थात पाश्विक। आज हमारी सड़कें जंगल बन गई हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। विशेष करके जब हम बड़े शहरों की ओर देखते हैं तो महिलाएं बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है। और 14वीं बात देखते हैं, भले के बैरी, भलाई से लोग घृणा करने लगे हैं। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें ही सब कुछ मिले, वे भला नहीं करना चाहते हैं। जो भला करता है उसके वे बैरी हो जाते हैं। 15वीं बात है विश्वासघाती। कुछ लोगों पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, वे आपसे अच्छी बातें तो करेंगे परंतु आपको धोखा दे देंगे, इसलिए कहता है विश्वासघाती। और 16वीं बात है ढीठ अर्थात उतावले। और 17वीं बात है घमंडी। घमंड के नशे में कुछ लोग अंधे हो जाते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि उनके पास जो पद प्रतिष्ठा है, जो साज सम्मान है, ये सब कुछ उनके द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा है। और चाहिए कि वे परमेश्वर को धन्य कहें, परंतु वे अपने घमंड के नशे में अंधे हो जाते हैं। और 18वीं बात है परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले। मेरे प्रियो, यह आज के मनुष्य का चरित्र चित्रण है। सुख विलास पर इतना पैसा कभी व्यय नहीं किया जाता है जितना आज किया जाता है। खेल जगत और मनोरंजन के साधनों को ही आप देख लें, यह आज मनुष्यों के आकर्षण का केंद्र है और रोम के विनाश का कारण भी यही हुआ था। मुझे खेलों में भाग लेना सदा ही अच्छा लगा है, परंतु बैठकर खेलने वालों को देखते रहना नहीं। मैं किसी के पैसा कमाने के विरुद्ध में नहीं हूं, परंतु बात तो यह है कि मनोरंजन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से अधिक सुख विलास का प्रेमी हो गया है। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि हम इस संसार में क्या कर रहे हैं। क्या हम सुख विलास में लिप्त हैं, या हम परमेश्वर के वचन और उसके डर, उसके भय में जीवन को बिताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमने 18 बातों को देखा है। अब हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 3:5 में लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। मेरे मित्रों, यहां पर हम 19वीं बात को देखते हैं कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वे धार्मिक रीतियों का पालन करेंगे परंतु जीवन और सत्य से वंचित रहेंगे। पौलुस इसीलिए कहता है कि ऐसों से परे रहना अर्थात उनसे दूर रहना, विश्वासी उनसे दूर रहे। क्या आप ऐसी शिथिल और निर्जीव कलीसिया में हैं, जबकि आप एक विश्वासी हैं? परमेश्वर का वचन कहता है उनसे परे रहो, तो आप क्या करेंगे? आप उन प्रचारकों के साथ सहयोग क्यों नहीं करते जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं? 2 तीमुथियुस 3:6-7 में लिखा है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। दुर्बल स्त्रियों, कुछ लोग वर्षों से बाइबल सभाओं में जा रहे हैं परंतु परमेश्वर के वचन के बारे में वे कुछ भी नहीं सीखे हैं, वे परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके जीवन नहीं बदले हैं। मेरे मित्रों, यदि आप इस श्रेणी में हैं तो घुटनों पर गिरकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप कब तक दूसरों के द्वारा खिलाए जाते रहेंगे, एक बच्चे के समान जिसको माँ चम्मच से खिलाती रहती है? जवान होने के बाद भी क्या माँ उसे खिलाती रहेगी या उसे स्वयं खाना है? यही बात हम सब के लिए है। यदि हम विश्वासी हैं, मजबूत हैं, तो हमें स्वयं से खाना है, ना कि दूसरों के द्वारा हमें खाते रहना है। दूसरा तीमोथियुस 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। यन्नेस और यम्ब्रेस ये मिस्र के 2 जादूगर थे जिन्हें राजा ने बुलवाया था। जब मूसा मिस्र के राजा के समक्ष चमत्कार दिखा रहा था, यदि पौलुस हमें इनके नाम नहीं बताता तो हम इन जादूगरों के नाम भी कभी नहीं जान पाते। पौलुस ने उनके नाम कैसे जाने? निसंदेह परमेश्वर के आत्मा ने उस पर प्रकट किया है। उनके नाम का उद्देश्य बस यही है कि वे मूसा का सामना करने के लिए खड़े थे और पौलुस उनके नाम को जानता था। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 7 में इस घटना का उल्लेख है। मेरे मित्रों, निर्गमन का यह वृतांत प्रकट करता है कि शैतान के पास दिव्य शक्तियां हैं और वह एक महान नकल करने वाला है। ये जादूगर शैतान के सामर्थ से मूसा की नकल करने में समर्थ थे, परंतु मूसा के पास परमेश्वर का सामर्थ था। मेरे विचार में उनके नाम लिखने का उद्देश्य भी यही है। हमें समझना है कि शैतान आज भी परमेश्वर की नकल कर सकता है। पहला यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद में यूहन्ना हमें चेतावनी देता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज अनेक प्रदर्शनों में भ्रम हो जाता है कि वह परमेश्वर का सामर्थ्य है, जबकि यथार्थ में वह शैतान का सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वे निकम्मे हैं। पौलुस कहता है कि आज भी यन्नेस और यम्ब्रेस के समान भ्रष्ट बुद्धि के मनुष्य हैं, विश्वास के विषय में निकम्मे, अर्थात विश्वास का त्याग करने वाले। एक बिशप था जो इसराइल तक इसलिए गया कि परमेश्वर के वचन के कुछ महान सत्यों को झूठा सिद्ध करे, परंतु उन्हें झूठा सिद्ध करने के प्रयास में उसने उन्हें सच्चा सिद्ध कर दिया, जिनमें यह भी एक है। वह वहां बड़े ही विचित्र रूप से मर गया। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वह भ्रष्ट बुद्धि मनुष्यों का एक अच्छा उदाहरण है, जो कभी परमेश्वर के वचन पर चलता था और फिर जैसा धर्मशास्त्र कहता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसने विश्वास का पूरा त्याग कर दिया था और यही कारण है कि उसकी बुरी मृत्यु हुई। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। उस विषय का उदाहरण हमारे लिए एक चेतावनी होना है। आप प्रेत जगत में यदि चाहें तो हाथ डालें, परंतु यह बहुत ही खतरनाक है। आज शैतान की शक्तियों का प्रदर्शन चारों ओर है। यह हमारे भौतिकवाद के युग के विरुद्ध है, जिसने परमेश्वर को पूर्ण रूपेण त्याग दिया है। वह अलौकिक को देख रहा है, परंतु सब शैतानी बातें हैं। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य किस प्रकार से परमेश्वर से दूर होता जा रहा है, किस प्रकार अपने आप को नरक की ओर ले जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें आज इस बात के द्वारा से सचेत करता है, स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर की वचनों को पढ़ें, ताकि हम सत्यता को जानकर उसका अनुसरण कर सकें। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।